मयि बुद्धिर्निवेशया నివసిష్యసి మయేవ అతౌ త్వం న సంశయ. మయేవ మనాదత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ నివసిష్యసి మయేవ అతౌ త్వం న సంశయ. మయేవ మనాదత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ నివసిష్యసి మయేవ అతౌ త్వం న సంశయ. आगे आगे माता जी शब्दार्थ मेरे पीछे पीछे एक एक बार आप पीछे दोहराएं. मई मुझ में एवा निश्चय ही मना मन को आदत्स्व स्थिर करो. मई मुझ में बुद्धि बुद्धि को निवेशया लगाओ. निवस्यष्यसि तुम निवास करोगे. मयि मुझ में एव निश्चय ही अतः ऊर्ध्वम तत्पश्चात उसके बाद न कभी नहीं संशया संदेह. अनुवाद अंतात्र भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा किया गया. शिला प्रभुपाद की श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है. भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ. इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे. तात्पर्य जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है. अतः इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है. भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है. भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है. अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंगा शक्ति भक्त की जीवा पर नाचते रहते हैं. जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं और इस तरह भक्त इस उचिष्ट जूठन को खाकर कृष्णमय हो जाता है. जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता वह नहीं समझ पाता कि यह सब कैसे होता है. यद्यपि भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी विधि की संस्तुति की गई है. ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिजत कृपातनुं वन्दे श्री गुरुदेवतां वांछा कल्पत्रुभ्यश्च कृपा सिंधुभैः च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. तो भगवद गीता के 18 अध्यायों में बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है भक्ति योग अध्याय 12. इस 12 अध्याय में भी चैप्टर 12 में भी डिवोशन सर्विस भक्ति योग में भी कुछ श्लोक ऐसे हैं जो वास्तव में बिल्कुल पकड़ लेने वाले हैं. तो ये श्लोक जो सार है वास्तव में, भगवान यहाँ कहते हैं अर्जुन को, तीन बार भगवान मई 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 कहते हैं, मई एव मन आधत्स्व, अपना मन मुझ में धर दो, रख दो, कहीं जाना नहीं चाहिए, फंसा दो इसे, लटका दो, अड़ा दो, इस मन को और कहीं नहीं ले जाना। फिर मई बुद्धि निवेश, मुझ में सारी की सारी बुद्धि निवेश कर दो। जितनी इंटेलिजेंस हमारे पास हो सकती है, सारी भगवान कहते हैं कि वो सब निवेश, वो सारी इन्वेस्टमेंट मेरे लिए होनी चाहिए, आपकी इंटेलिजेंस और कहीं नहीं जानी चाहिए। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, अर्जुन पूछे भगवान से कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों आपको मेरा मन चाहिए, मेरी बुद्धि आपको चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि इसके बाद तुम्हें जो फल मिलने वाला है, अतः ऊर्ध्वम, अतः ऊर्ध्वम का मतलब इसके पश्चात, ये दो काम करने के बाद निवशिष्यसि, भविष्य काल में निवास करोगे। कहाँ निवास करेंगे? मई एवा, तुम मुझ में ही वास करोगे, 24 घंटे और कुछ नहीं है, मेरे साथ ही रहोगे, बिल्कुल दिव्य स्थिति में रहोगे। तो भगवान कहते हैं कि दो इन्वेस्टमेंट अगर जीव करता है, अपना मन भगवान में लगाने का प्रयत्न करता है, अपनी बुद्धि भगवान में लगाने का प्रयत्न करता है, तो भगवान कहते हैं कि वास्तव में जीव मुझसे अलग उस समय रह नहीं सकता है, अलग नहीं हो सकता है। तो अर्जुन मान लो कहे कि नहीं, ये पॉसिबल है कि कभी कभी बाहर हो जाए, भगवान कहते हैं ना संशय, बिल्कुल डाउट करने की जरूरत नहीं है, मुझसे आप बाहर रह ही नहीं सकते हो, किसी भी तरह से इस भौतिक जगत में तुम फिर वापस, ध्यान नहीं जाएगा, मन नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। कोई पूछे कि क्यों रखना है भगवान में मन और बुद्धि? मैं एक बार एक्सपेरिमेंट एक पढ़ रहा था कि कुछ चूहों को एक बड़े से पिंजरे में बंद कर दिया, तो बड़ा छटपटा रहे थे, कोई ऊपर से फुदक के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, कोई जाल काट करके, कुछ साइड से कहीं से कुछ होल मिल जाए, बाहर हो जाए, होल करके किसी तरह से बाहर आ जाए, बड़े प्रयास कर रहे थे सभी चूहे लग लग के कि किसी तरह से बाहर आ जाए। लेकिन मोटा लोहा था, वो काट नहीं पा रहे थे और रास्ता बाहर आने का था नहीं, तो फिर भी प्रयास अच्छे से लगे रहे, कभी यहां कभी वहां, कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ कि एक चूहे का जो मुंह है वो एक बटन पे लग गया, जैसे ही उस बटन पे लगा उसके साथ एक छोटा सा होल था, उस होल में से कुछ खाने का बाहर आ गया, समझो एक छोटा सा मटर आ गया या कोई भी अन्न का कुछ। तो एकदम जब उसने देखा कोई चीज गिरी तो खटाक से अपने मुंह में डाली, अरे यार तो बहुत बढ़िया काम हो गया, तो अपने मुंह में डाल के बड़ा प्रसन्न। फिर दूसरे चूहे ने देखा कि इसका हुआ क्या था कि इसको खाने को मिला, वो कहीं पे मुंह, तो उसने भी आकर के वहां भी, वहां से उसको भी मिला, वो भी गिरा। तो अब सारे चूहे मस्त अपना आए, एक एक बार दबाएंगे। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ कि उनका झगड़ा शुरू हो गया, उसके साथ एक बटन और था, तो कुछ चूहे ऐसे भी थे कि उनको लगा कि यहां किसी भी उस पर दबाने से काम हो जाता है, तो उन्होंने दूसरे बटन पे दबाया, दूसरे बटन पे शॉक आता था, करंट। तो जैसे ही इस चूहे ने एक्सपेरिमेंट किया और दूसरे पे लगाया तो एकदम वो करंट आ गया, वो तो भागा पीछे। अब दूसरों ने देखा कि इसको क्या हो गया, ये झटक करके पीछे आ गया, वो दो चार आए वो भी झटक करके पीछे। अब उनको ये समझ में आ गया कि खाने का माल यहाँ है, झटका यहाँ लगता। तो जहां से खाने का माल आता था बस उसी पे ज्यादा जाते थे, गलती से झटके तो जाए तो रुक जाते थे। तो एक्सपेरिमेंट करने वालों ने क्या किया, उसको रिवर्स कर दिया, जहां से पहले माल आता था वहां पर झटका, और जहां पे झटका आता था वहां पर माल। अब जो झटका खा रहे थे वो तो गए, अब मान लो खाने के लिए जा रहे हैं और उस पर दबाया तो वहां झटका आ गया, तो उसको तो समझ में आ गया यहां दोबारा नहीं आना है। लेकिन जिसने वहां पहले माल खा चुका है वो तो आएगा बार बार माल खाने के लिए, तो माल खाने के लिए आए उसको भी झटका लग गया। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें, भूख तो लगी है, बहुत लोगों को मिला नहीं था, लेकिन जिसको मिल गया था वो भी ताक में था कि किसी तरह से माल दोबारा मिलना चाहिए। तब क्या किया कि दूसरा किसी चूहे का गलती से वहां माल जहां था, दूसरी बार एक्सपेरिमेंट जहां चेंज करके वहां उसका मुंह लगा, वहां से माल आया। अरे वाह यहां से आएगा, तो वहां से आया, पीछे पीछे सब लगे, उसने अपना दूसरे को मिला, तीसरे लगाए, तीसरे को मिला। तो इस तरह से अब एक्सपेरिमेंट करने वालों ने क्या किया, बदल बदल कर लगाना शुरू किया, एक मिनट इधर एक मिनट इधर एक मिनट इधर। अब ये नहीं पता लग रहा कि माल कहां से आएगा और झटका कहां से लगेगा। जिसको जहां से माल मिला माल लिया नहीं तो झटका मिला। तो इस प्रोसेस में अब किसी को भी याद नहीं है कि ओरिजिनल पर्पस था क्या। ओरिजिनल पर्पस क्या था, इस पिंजरे से बाहर निकलना था। और अब वो किस चक्कर में है कि किसी तरह से माल मिल जाए। अब माल के चक्कर में कभी माल मिलता है, कभी झटका मिलता है, कभी झटका मिलता है, कभी माल मिलता है। तो बाहर निकलने का किसी को कोई सुध नहीं है। वास्तव में हम सब बद्ध जीवों की यही स्थिति है, सुख मिल जाए सुख मिल जाए, सुख के चक्कर में दुख मिल जाए, नहीं नहीं ये दुख के बाद फिर सुख मिल जाए। जिस चीज से आज अभी सुख मिल रहा है थोड़े समय के बाद उससे दुख भी मिल सकता है, जिस चीज से आज दुख मिल रहा है पता नहीं उससे फिर कभी भविष्य में सुख भी मिल जाएगा। तो इस भौतिक जगत में कॉम्बिनेशंस कर करके वास्तव में हम ये भूल गए हैं कि ओरिजिनली हम सब चूहों को फंस करके इस पिंजरे में बाहर अब निकलना है, रास्ता बाहर बनाना है। तो भगवान इस श्लोक में क्या बता रहे हैं, बाहर आने का रास्ता क्या है। तो भगवान ने क्या कहा, मयि बुद्धिं निवेशया निवसिष्यसि मयि एव अतौ त्वं न संशया। अपने मन को मुझ में लगाओ, अपनी बुद्धि को वास्तव में लगाओ, इस पिंजरे से बाहर आ सकते हो। कोई कहे कि मेरा मन तो नहीं लगता है भगवान, बड़ा मुश्किल है, इम्प्रैक्टिकल है, कैसे मन को लगाए। और बुद्धि, बुद्धि तो वास्तव में चलती है कि किस किस तरह से इस जगत में निवेश शब्द दिया भगवान ने, इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट तो जहां जानी चाहिए वहीं जा रही है, बुद्धि को कैसे लगाएं भगवान ने। तो भगवान को यह बात पता है कि जीव उतनी आसानी से अपने मन और अपनी बुद्धि को लगा नहीं पाएगा। तो जब अर्जुन को भगवान ये एक अल्टीमेट पॉइंट बता रहे हैं कि वास्तव में इस पिंजरे से बाहर आने के लिए ये दो काम करने पड़ेंगे, तो भगवान को लगा कि शायद अर्जुन तो कर ले, लेकिन बाद में जो आने वाले जीव हैं वो नहीं कर पाएंगे। या हो सकता है कि अर्जुन भी ना कर पाए, या अर्जुन के मन में हो सकता है कि भाव आए कि मेरे बस की बात नहीं है, कुछ और कहो, कुछ इससे हल्की बात, कुछ आसान बात कहो, ये ऑप्शन मुझे सूट नहीं कर रहा है। तो भगवान ने मान लो अर्जुन का भाव पकड़ा और भगवान ने कहा कि ठीक है, अगर मन मुझ में नहीं लगा सकते हैं, बुद्धि मुझ में नहीं लगा सकते हैं, तो ऑप्शन अभी भी है। भगवान निष्ठुर नहीं है, भगवान बहुत कंपैशनेट है, करुणावान है, प्रैक्टिकल है। तो वो जानते हैं कि बद्ध जीव जब ले रहा है कभी झटका कभी माल, कभी झटका कभी माल, तो इस झटके और माल से आसानी से बाहर आएगा नहीं, तो इसको थोड़ा आसान विकल्प देना पड़ेगा। तो इसके बाद अगले श्लोक में, नवे श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, भगवान इसका विकल्प देते हैं। नवे श्लोक में भगवान कहते हैं, एक बार वो आप मेरे साथ बताइए कि जो पहला काम नहीं कर पा रहे हैं, भगवान कहते हैं कि अथ चित्तं न समाधातुम्। अथ अथ का मतलब अगर, कोई बात नहीं है, चित्तम माने मन, ना समाधा तुम लगा नहीं पा रहे हो, अपना मन मुझ में नहीं दे पा रहे हो। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी डिफिकल्टी है, प्रैक्टिकल है, परिवार में रहना है, ऑफिस में जाना है, घर के 100 तरह के काम है, ठीक है, मन वहीं जाता है, यहाँ नहीं आ रहा है। अथ चित्तम न समाधा तुम न शक्नोषी मई स्थिरम। अगर मुझ में अपना मन स्थिर नहीं कर सकते, तुम्हारी यही प्रॉब्लम है ना अर्जुन, कि तुम अपना मन मुझ में नहीं स्थिर कर, अपनी बुद्धि नहीं दे पाओगे, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है ना। अगर नहीं कर सकते हो तब क्या करो, अभ्यास योगेना ततो, अभ्यास योगेना ततो माम इच्छा तुम धनंजया, माम इच्छा तुम धनंजया। अथ चित्तम न समाधा तुम मई शक्नोषि, ना शक्नोषि मई स्थिरम अभ्यास योगे न ततो, माम इच्छा तुम धनंजया। धनंजय अर्जुन का नाम है, तो भगवान उसका नाम रख करके बोल रहे हैं, ठीक है, अपना मन और बुद्धि मुझ में नहीं फिक्स कर सकते, स्थिर नहीं कर सकते, तो क्या करो, तथा अभ्यास योगे ना, तब अभ्यास से क्या करो, माम इच्छा तुम मुझे इच्छा, आप तुम, इच्छा माने इच्छा और आप तुम माने प्राप्त करने की, मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। कैसे इच्छा करो, अभ्यास करके इच्छा करो। मन नहीं जा रहा है क्योंकि इच्छा नहीं है वास्तव में, इच्छा है भोग भोगने में, इच्छा है इस भौतिक जगत में। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, उस इच्छा को धीरे 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 अभ्यास से प्यूरिफाई करो, शुद्ध करो। अभी अभ्यास से क्या करें, अर्जुन पूछ सकता कि अभ्यास में क्या करना है, किस चीज का अभ्यास करना है, कुछ ना कुछ तो करता ही रहता हूं। तो भगवान कह रहे हैं कि भक्ति योग का धीरे धीरे अभ्यास करो। 24 घंटे मन नहीं रहता है, बुद्धि 24 घंटे नहीं रहती है, तो कुछ देर उसको लगाने का प्रयत्न करो, आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, धीरे 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 इच्छा करो, इच्छा को बढ़ाओ, क्योंकि जहां इच्छा जाती है, जहां मन जाता है, अपने आप इंद्रियां वहां चली जाती हैं। भोग में मन जाता है तो अपने आप इंद्रियां साथ दे रही हैं, सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि अभ्यास करो, भक्ति योग में थोड़ा 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 अभ्यास करना चाहिए। तो इस कलयुग में अभ्यास का अर्थ होता है कि अपने आप को, स्वयं को इस शरीर के माध्यम से, अगर मन नहीं जा रहा है, बुद्धि नहीं जा रही है, तो शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से भक्ति में लगाने का प्रयत्न करो, अभ्यास करो। पहले श्लोक में भगवान ने जो दो चीजें कही हैं, वो दोनों की दोनों सूक्ष्म हैं, सकल है, मन नहीं देख सकते, बुद्धि नहीं देख सकते। तो भगवान ने कहा कि अगर सकल सूक्ष्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, तो स्थूल इन्वेस्टमेंट तो करो। स्थूल इन्वेस्टमेंट का मतलब इस शरीर से, इंद्रियों से अभ्यास करो। इन इंद्रियों के अभ्यास में सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय होती है जिह्वा, टंग। बाकी जितनी इंद्रियां हैं वो दो हैं और काम करती हैं एक। आंख कितनी है, काम करता है एक। कान भी दो है, काम एक करता है। नाक दो है, काम एक है। पांव भी दो है, काम एक है। हाथ दो है, काम वही है। लेकिन जिह्वा कितनी है, काम कितने हैं, तो कितने टाइम्स ये बाकी इंद्रियों से पावरफुल है, 4 times पावरफुल, 4 गुना। तो उस 4 गुना वाली इंद्री से सेंस से भगवान कहते हैं शुरू करो, बाकी को भी लगाएंगे लेकिन मैक्सिमम माइलेज। जैसे बच्चों के स्कूल में जब या कंपटीशन एग्जाम में जब कोई ऑब्जेक्टिव आई, तो जो क्वेश्चन आते हैं पहले वो कर लो, पास होने की पहले तैयारी कर लो, बाकी धीरे धीरे अटेम्प्ट करते रहोगे। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करना है जीवा का। तो जीवा जो 2 काम करती है वो कौन कौन से काम है, एक तो खाना है और एक बोलना है। तो भगवान कहते हैं कि सबसे पहले इन दोनों से अभ्यास करो। भक्ति योग का जीवा से अभ्यास शुरू होता है। तो खाने में उसको शुद्ध करना चाहिए, भगवान को भोग लगा करके खाते हैं तो अभ्यास हो गया, कुछ और नहीं करना है। और बोलने में भगवान की कथा सुननी चाहिए, बोलनी चाहिए और भगवान का नाम बोलना चाहिए। तो धीरे धीरे बाकी इंद्रियां भी इसी तरह से लगने लगती। प्रभा जी यहाँ पर तात्पर्य में कई बात कहते हैं कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके भगवान के नाम का जप करना चाहिए। इस कलयुग में जो भगवान का नाम है उसको महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो बाकी सब इंद्रियों को भी, आंखों को भगवान की सेवा में लगाएं, कानों को सुनने में लगाएं, या बाकी जितने हैं शरीर की सभी इंद्रियों को लगाया जा सकता। तो अभ्यास करो। अभ्यास से क्या पाना क्या है, माम इच्छा तुम, मुझे प्राप्त करने की इच्छा को बलवती करना है, दृढ़वत करना है। एक बार इच्छा ये दृढ़वत हो जाए कि नहीं मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं, तो ऑटोमेटिकली जो स्टेप नहीं हो पा रहा था पहले जो हमने छोड़ा है 8वें श्लोक का, वो धीरे धीरे अपने आप आने लगता है। मैं एक बार मुंबई में IDBI बैंक में गया था। हमें से कोई IDBI बैंक गए हैं क्या मुंबई में? IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। उस बैंक में क्या है, कोई 28 फ्लोर का उनका ऑफिस है, तो नीचे से कोई भी लिफ्ट डायरेक्टली 28 फ्लोर तक नहीं जाती है। सीधा कोई 28 फ्लोर पर जाना चाहे तो नहीं जा रहे, ऑप्शंस हैं, कोई लिफ्ट 12 तक जाती है, कोई 18 तक जाती है, कोई 16 तक जाती है, कोई 20 तक जाती है, 28 तक कोई नहीं पहुंचती। लेकिन जहां भी जो जा रही है लिफ्ट, वहां से नई लिफ्ट पकड़ के 28 तक पहुंचा जा सकता है। जो आदमी 16 पर पहुंच गया उस लिफ्ट से उतर के दूसरी पे बैठे 28 पे पहुंच जाएगा। जो 20 पे पहुंचा वही लिफ्ट जो नीचे से 16 पर शुरू हुई है वो भी 28 तक ले जाएगी। तो जो लोग सीधा नहीं पहुंच पा रहे हैं वो भी पहुंच जाएंगे। पहले 16 तक पहुंच जाओ, 18 तक पहुंच जाओ, उसी माले पर दूसरी लिफ्ट तैयार खड़ी है। मन तैयार है, एक बार इच्छा हो गई तो वहां से सीधा। अतः ऊर्ध्वम भगवान कह रहे हैं ना संशया, कोई डाउट नहीं है। तो अभ्यास करना चाहिए कि जैसे हम कीर्तन कर रहे थे, ये कीर्तन करने में वास्तव में शुद्धि हो रही है, ये अभ्यास, यही अभ्यास है। भक्तों के साथ बैठ करके जब भक्ति में कोई भी कार्य किया जाता है तो वो भक्ति योग का अभ्यास होता है। अब कोई कहे नहीं मैं तो ये भी नहीं कर सकता, मेरे लिए तो ये भी पॉसिबल नहीं, कोई कह सकता है ये भी डिफिकल्ट है। एक तो ये बार बार आप तो कीर्तन करते हो, नाम लेते हो, ये मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। एक बार नाम लेना चाहिए बस दिन में भगवान का, ज्यादा नहीं लेना चाहिए। या नहीं मैं जो खा रहा हूं वो ठीक है, उसमें क्या, खाना तो खाना होता है, ये क्या भोग लगा कर खाने से कोई विशेष काम हो जाता है, कोई मैं बात नहीं मानता। लेकिन मुझे वास्तव में दुख बहुत है, मैं इस जगत से खुश नहीं। तो इस तरह के जो लोग हैं कि मान लो अभ्यास भी नहीं करना चाहते हैं या किसी कारणवश अभ्यास नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनको समझ में आ रहा है कि वास्तव में हम चूहों की तरह फंसे तो हैं, बार बार झटका तो लगता है। अब कहां से झटका लगता है पता नहीं, लेकिन झटके लगते हैं। तो भगवान कहते हैं ठीक है, अगर ऐसी स्थिति है तो उनको भी छोड़ेंगे नहीं। भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि वास्तव में सबको इस पिंजरे से बाहर निकाल कर लेके जाना है, यही उनका काम है, इसलिए बैठे। जीव मनुष्य के अतिरिक्त जितनी भी योनियों में है, भगवान उसके साथ नहीं छोड़ रहे हैं, भगवान उसके साथ ही है। हृदय में आत्मा है, आत्मा में परमात्मा है, साथ बिल्कुल हर योनि में। चाहे वो शरीर सुअर का भी जीव प्राप्त करता है तो भगवान सुअर के शरीर में मल में रहते हैं। सुअर विष्ठा खाता है तो भगवान उससे ये कोई नहीं कहते हैं मैं तेरे को छोड़ कर, रहते हैं साथ ही रहते हैं। तो अगर इस तरह की स्थिति है कि जो अभ्यास भी नहीं कर पा रहा है तो भगवान क्या कहते हैं कि अभ्यास करने में भी अगर असमर्थ हो, अभ्यासे अप्यसमर्थोसि, अभ्यासे अपि असमर्थोसि, अभ्यास में भी अगर असमर्थ हो, मन भी नहीं रख पाते हो, बुद्धि का निवेश भी नहीं है, अभ्यास भी नहीं कर सकते हो, अभी भी विकल्प है तुम्हारे लिए, कोई बात नहीं, स्टिल देयर इज एन ऑप्शन। ऑप्शन क्या है? अभ्यास अप्यसमर्थोसि मत कर्म परमो भव, मत कर्म परमो भव, अभ्यास अप्यसमर्थोसि मत कर्म परमो भव, मदर्थम अपि कर्माणि, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं अवाप्स्यसि, कुर्वन् सिद्धिं अवाप्स्यसि। अभ्यासमर्थसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। तो भगवान कहते हैं कि अगर अभ्यास करने में भी असमर्थ हो तो भी कुछ करके कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि, कुछ करके तुम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो। तो क्या करना है अगर अभ्यास भी नहीं होता है? तो भगवान कह रहे हैं कि मत कर्म परमो भवा, परम कर्म करो, मेरे लिए परम कर्म करो, मेरे अर्थ के लिए कर्म करो। ठीक है, जप नहीं कर सकते हैं, कीर्तन नहीं कर सकते हैं, भक्तों का संग नहीं कर सकते हैं, प्रसाद खाने में मान लो कोई मुश्किल है, तो भगवान कह रहे हैं कि कुछ ऐसा कर्म करो जो मुझसे संबंधित हो जाए। मंदिर में नहीं आ सकते हो, मंदिर के लिए दान दे सकते हो, कीर्तन में नहीं आ सकते हो, कीर्तन में कुछ योगदान कर सकते हो, कुछ धन का योगदान कर सकते हो। पहले श्लोक में भगवान ने क्या कहा? सूक्ष्म चीजों के बारे में बताया, सकल मन और बुद्धि। सबसे अगर सकल चीज भगवान में लग जाती है तो भगवान कहते हैं कि अपने आप पिंजरे से बाहर। सकल नहीं लगा पा रहे तो ग्रॉस लगाइए, शरीर को लगाइए, इंद्रियों को लगाइए, स्थूल चीजों को लगाइए। अगर सूक्ष्म भी नहीं लग रहा है, स्थूल भी नहीं लग रहा है, तो जीव का अपना जो कुछ वर्तमान में शरीर या मन है वो तो नहीं जा रहा है, लेकिन जीव को भाव होता है अहम ममेति, ये मैं हूं और ये मेरा है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं नहीं लग सकता है अगर भगवान की सेवा में, तो मेरे को भगवान की सेवा में लगाओ। मेरे को सेवा में लगाने का मतलब क्या है? जिसको मेरा मानते हो, किसको अपना मानते हैं? इस भौतिक जगत में जिसको बद्ध जीव अपना मानता है, सबसे ऊपर धन को अपना मानता है, लक्ष्मी को अपना मानता है, ऐसे सता करके रखना अपने साथ। इसको बाह्य प्राण बोलते हैं शास्त्र में। एक तो होता है अंता प्राण, एक मिनट नहीं आए तो खत्म हो गया था, हम उसको बाह्य प्राण बोलते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए नहीं आए तो हो गया काम। अगर मान लीजिए यहां से कहीं दूर जाना है, बाह्य प्राण लेकर के नहीं चलेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। अंता प्राण के साथ सोचते हैं कि मैं यहां से और कलकत्ता पहुंच जाऊं तो बहुत मुश्किल है, बाह्य प्राण साथ देना पड़ेगा। आजकल तो दोनों पॉकेट में बाह्य प्राण होते हैं, एक पॉकेट में पर्स होता है, दूसरे में दूसरा बाह्य प्राण होता है। ये भी हो तो नहीं चलता है आजकल। खैर, इसको भगवान नहीं कह रहे कि मेरी सेवा में लगाओ, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये देना चाहिए योगदान। भगवान कह रहे हैं कि मेरे लिए कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ योगदान करो। तो योगदान करने से होगा क्या, क्या होता है? भगवान कहते हैं कि सिद्धि प्राप्त कर जाओगे, मुझ तक पहुंच जाओगे। तो यहां समझना पड़ेगा कि इस तरह का कार्य करने से होता क्या है। जब भक्ति कर, भक्ति परक काम में जब कहीं पर लक्ष्मी दी जाती है, तो भगवान सातवें अध्याय के 15वें 16वें श्लोक में बताते हैं कि इससे सुकृत अर्जित होता है। सुकृत का मतलब क्या होता है? पायस एक्टिविटी, पुण्य अर्जित होता है। तो भगवान कहते हैं कि चार तरह के लोग भक्ति में आ जाते हैं, जो अभी भक्ति में नहीं है। जो पहले दो श्लोक हमने पढ़े वो सीधा नजर आ रहा है कि भक्ति हो रही है, पहले में तो मन लगा बुद्धि लगा तो भक्ति डायरेक्ट हो रही है, और दूसरे में भक्ति का अभ्यास हो रहा है तो भक्ति हो रही है, लेकिन तीसरे में जहां पर बाह्य प्राण लग रहा है या कुछ और लग रहा है, तो डायरेक्ट भक्ति हो ना हो लेकिन कम से कम सुकृति हो रही है, पुण्य अर्जित हो रहा है। तो भगवान कहते हैं कि चार तरह के लोग मेरी भक्ति में आ सकते हैं। वो कौन से हैं चार तरह के लोग? जो डिस्ट्रेस्ड हैं, आरती हैं, बहुत दुख में हैं, तकलीफ में हैं, जिनको धन की इच्छा है, वैभव की इच्छा है, अर्थ आरती है, अर्थ लेना चाहते हैं, या ज्ञानी हैं, इंटेलिजेंट हैं, समझना चाहते हैं कि वास्तव में हम कैसे कैसे, या जिज्ञासु हैं, इंक्विजिटिव हैं। तो ये चार तरह के कैटेगरी के लोग जो भक्त नहीं है वो मेरी भक्ति में आ सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर क्या हो, वो पुण्यवान हो, अगर वो सुकृतिवान हो, अगर उन्होंने कोई पायस एक्टिविटी किया हो। तो एक चेन बनती है कि अगर कोई पायस एक्टिविटी करता है तो किसी ना किसी समय में वो भक्ति में जुड़ जाएगा। तो तीसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं कि अगर IDBI की 28वीं फ्लोर पर पहुंचना है तो एक क्लिप ले लो जो 6 तक जाएगी, वहां से दूसरी ले लो जो 18 तक जाएगी, वहां से तीसरी ले लो जो 28 तक पहुंच जाएगी, तो पहुंचा देंगे। सबके लिए ऑप्शन है। अब कोई कहे नहीं, अगर मंदिर में देता हूं, मैं तो क्रिश्चियन फैमिली से हूं, या मैं तो मुस्लिम हूं, या भगवान को तो सबको देना है ना, अपने पास लाना है सबको, या मान लीजिए बिल्कुल पत्नी एक रुपया नहीं देने देती है, सारी की सारी सैलरी उसी के नाम पे, अगर वो हाँ करेगी तो मैं दूंगा, नहीं हाँ करेगी तो मेरी तरफ से हाँ नहीं है, कोई भी बंधन हो सकता है। तो अगर इस तरह की बात है तो भगवान कहते हैं ठीक है, तो फिर किसी को भी दो, कुछ त्याग करो, कुछ काम करो, अपने आप हृदय से कुछ सेक्रीफाइस करो। तो सेक्रीफाइस करने से भी धीरे धीरे मन शुद्ध होता है। शास्त्र में कहते हैं कि दान देने से धन की शुद्धि होती है, दान देने से धन की शुद्धि होती है। तो भगवान कहते हैं थोड़ा शुद्ध करो, क्यों अशुद्धि अशुद्धि खाए जा रहे हो, कुछ शुद्ध करके फिर खा लो। तो शुद्ध करने का मतलब है कि अगर कहीं धार्मिक जगह पर नहीं देना तो कहीं दान करो, कोई लूले को, लंगड़े को, किसी को कुछ कुछ ना कुछ, हॉस्पिटल में दाएं बाएं कुछ ना कुछ सहायता करो। तो इस तरह से भगवान ने प्रोसेस बनाया है। लेकिन ये प्रोसेस बनाया किसके लिए? पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए? किसके लिए प्रोसेस बनाया भगवान ने? मात्र मनुष्यों के लिए प्रोसेस बनाया है। तो इसका मतलब मनुष्यों के पास ही वास्तव में अपॉर्चुनिटी है कि इस पिंजरे से बाहर आ सकते हैं, अपना मन देकर के आ सकते हैं, बुद्धि देकर के आ सकते हैं, अभ्यास करके आ सकते हैं, या बाकी जो भगवान ने सेकेंडरी स्टेप्स बताए उनसे आ सकते हैं। तो कोई कहे नहीं, मनुष्य जीवन तो 2 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 20,000, कितनी कितनी एज मिलती है, करते रहेंगे, काम चलता रहेगा, पहले ये स्टेप करते हैं फिर ये कर लेंगे, पहुंच जाएंगे धीरे धीरे ऊपर। तो किसके पास अनलिमिटेड टाइम है मनुष्य जीवन में? आराम से करेंगे, हो जाएगा, पहले इस फ्लोर पे पहुंच जाते हैं फिर उस फ्लोर पे पहुंच जाते हैं, पहुंच जाएंगे। कौन मानता है कि उसके पास बहुत टाइम है? अगर इस पिंजरे से बाहर आना है तो मन और बुद्धि भगवान में देनी पड़ेगी। ये रास्ता है। पिंजरे का जो अल्टीमेट होल है वो मन और बुद्धि भगवान को देने से होगा। इतना तो माना जा सकता है कि वर्तमान में मन और बुद्धि नहीं आ रहा है, लेकिन अभ्यास तो किया जा सकता है, कम से कम इच्छा तो की जा सकती है कि मैं भगवान तक पहुंचूं। इतने स्तर पर तो भगवान अपेक्षा मनुष्य से करते ही हैं कि अभ्यास के स्तर पर तो आ ही जाए। तो अभ्यास करने की अपेक्षा वास्तव में मानव जीवन में इस सुहृद वातावरण में, जहां पर भगवान की कथा सुनने के लिए, नाम सुनने के लिए हम सब जुटे हैं, सबसे भगवान अपेक्षा करते हैं कि अभ्यास जरूर करना चाहिए। और धीरे धीरे अभ्यास करते हुए जब जीव शुद्ध होने लगता है तो अपने आप इच्छा होती है इस भोग से दूर जाने की, भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करने की। तो इस इच्छा को वास्तव में सबसे अधिक बलवत होता है इस कलयुग में भगवान के नाम से। एकदम 440 वोल्ट का डायरेक्ट पावर का कनेक्शन है। किसी में 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 30 वोल्ट है, 100 वोल्ट है, ये 440 वोल्ट का डायरेक्ट अभ्यास का कनेक्शन है। और कनेक्शन हो किस इंद्रिय से रहा है? जो 4 गुना काम करती है। तो 440 गुना 4 कितना हो गया? 1760। तो जहां 220 वोल्ट से काम चल जाएगा, 1760 अवेलेबल है, करिए जितना बाकी काम कर सकते हैं। हृदय से भगवान का नाम इस कलयुग में, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलव नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। इस कलयुग में वास्तविक जो पावर का कनेक्शन मिलता है, स्ट्रॉन्ग पावर कनेक्शन, अभ्यास से भगवान की इच्छा जागृत होती है, भगवान में मन देने का मन करता है, बुद्धि लगाने का मन करता है, वो हरि नाम है। तो हरि नाम के साथ मन दे करके जुटना चाहिए। प्रातः काल जल्दी से जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। दिन में तो खूब ऑफिस में, दाएं बाएं घर में, बच्चों के साथ काम रहता है, लेकिन सुबह ऐसी क्या आपदा, कोई 3-4 बजे कोई ऑफिस नहीं खुलता, सब ऑफिस बंद है, किचन भी 3-4 बजे नहीं खुलती है माता जी लोगों के, कोई काम नहीं है, उठ के स्नान करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, जोर जोर से नाम लेकर के भगवान का सुबह सुबह पड़ोसियों को भी जगा देना चाहिए। विश्वास मानिए, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। आप पूछिए, प्रभु जी कह रहे लड़ पड़ेंगे, नहीं होगा प्रभु जी सबको। और अगर कोई लड़ भी ले, मान लीजिए तो कोई बात नहीं, थोड़ा अंदर आकर के अपने आप को तो सुनाइए। और अगर पड़ोसी का नहीं, प्रभु जी गाइए, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, नींद भी आती है लेकिन सुनने में अच्छा लगता है। मैंने कई अपने पड़ोसियों से पूछा कि आपको आवाज में डिस्टर्बेंस तो नहीं होती है, मान लो बोले आवाज, पहले पूछा कि आपको आवाज आती है, बोले आवाज तो आती है, आपको डिस्टर्बेंस नहीं, डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं होती। हम बंद करते, धीरे करें, जोर से करो, ये प्रभु जी जागते नहीं है ऐसे, आपके नाम से जागते हैं। तो हमारे पड़ोस में एक माता जी रहती है, उनसे एक दिन हमने पूछा, बोले नहीं आपका जब जप होता है ना, वो सुन के मैं जाग जाती, फिर मैं भी जप करने लगती हूँ। अरे तो सब काम अपने आप होने लगता, आप निश्चिंत रहें, खुद भी शुद्धि होगी, वातावरण की भी शुद्धि होगी, और सबसे बड़ी बात है कि भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त होगा। तो सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके और भगवान के नाम के साथ जितना गाढ़ संबंध बना सकते हैं उसको सुनना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो इससे दो काम होंगे, एक तो धीरे धीरे ये पता लगेगा कि अब बार बार उन बटनों पर मुंह नहीं फेंकना, वो याददाश्त वापिस आएगी कि इस बिल से बाहर आना है, तो उन बटनों में ध्यान नहीं जाएगा, समझ में आने लगेगा कि मिल सकता है नहीं भी मिल सकता है, झटका आ सकता कुछ, लेकिन मेरा उद्देश्य वास्तव में ना झटका खाना है ना माल खाना है, मेरा उद्देश्य इस पिंजरे से बाहर आना है। महाप्रभु कहते हैं कि इससे चित्त शुद्ध होता है, भगवान का नाम लेने से हृदय की शुद्धि होती है। हृदय की शुद्धि का अर्थ है कि इसमें जो विकार में जो फंसे हुए हैं, बटनों में जो फंसे हुए हैं, उन बटनों से बुद्धि बाहर आने लगती है। हरे कृष्ण। किसी का कोई डाउट, कोई संशय या कोई टिप्पणी करना चाहे तो बहुत जरूरी है। माता जी कह रहे हैं कि जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना जरूरी है कि नहीं? जब तक नींद प्रॉपर नहीं हो जाए, 6-7 घंटा अगर उठ भी जाएंगे, 2.5 घंटे में 9 जप, 2 घंटे में प्राय 16 जप हो जाते हैं, और कई बार तो टाइम देखो तो 25 मिनट इस जप में लग गए। मैं तो जप कर रहा था, 25 मिनट में एक जप पूरा नहीं हुआ, तो जप नहीं कर रहे थे, रात में सोए प्रॉपर टाइम से नहीं, सुबह नहीं खुली माता जी, प्रॉपर टाइम में सोना है, मैक्सिमम 9, 9:30 तक सो जाना चाहिए, सुबह 4 बजे से देर से नहीं उठना चाहिए, 4 बजे तो समझ लो एकदम भी जाना चाहिए, उससे पहले हुए तो बहुत अच्छा है, 1/2 घंटे में अपना शुद्ध होकर के भगवान के नाम के साथ 2 घंटा, 7, 7:30 बजे तक 16 माला जप हो जानी चाहिए, फिर ना ऑफिस की कोई चिंता है ना बाकी घर के काम, अपने आप करेंगे पूरे दिन में। तो इस अभ्यास से वास्तव में जीव धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी, हाँ जी, प्रभु का बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत प्रैक्टिकल है कि 2 घंटा जप करके मन और बुद्धि 24 घंटे कैसे लग जाएंगे। तो भगवान कुछ ऐसी बात कह रहे हैं जो समझ में नहीं आ रही। अगर 2 घंटा जप करेंगे तो 24 घंटे मन कैसे जाएगा, बुद्धि कैसे जाएगी? 2 घंटा अगर नाम भगवान का सुन लिया तो वास्तव में सारा दिन नाम ही नाम गूंजेगा मन में, हृदय में और कुछ रहेगा नहीं। लेकिन अगर 2 घंटे अक्षरों का उच्चारण किया और नाम नहीं बोला तो उन दो घंटों में भी नहीं जाएगा और सारे दिन में भी नहीं जाएगा। तो उन दो घंटों में किया क्या? अक्षर निकल रहे हैं बाहर या नाम बाहर निकल रहा है? अगर नाम बाहर निकलेगा तो सुनाई देगा, अगर अक्षर बाहर निकले हैं तो सुनाई नहीं देंगे। तो वास्तव में अगर आत्मा अपना खुराक चाहती है, भूखी है, तो वो झपट करके पड़ेगी। एक भूखा आदमी को मान लीजिए सामने परोसेंगे तो वो दाएं रहेगा या सीधा अटैक करेगा, पी फोर पै जाओ, वो एकदम पकड़ के झटका दे करके खाएगा। तो उसी तरह से धीरे धीरे जब प्रयास करते हैं, नहीं मुझे भूख है, वास्तव में भूखे हम हैं, लेकिन जब नाम को धीरे धीरे सुनते हैं, थोड़ा परसेंटेज भी निकालनी चाहिए कि आज कितने परसेंट नाम सुना, और अपने आप को ग्लानी देनी चाहिए कि आज मैंने बहुत कम नाम भगवान का सुना। हो सकता है कि पूर परसेंटेज हो, लेकिन डिस्टिंक्शन से ऊपर रहने का सदा प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि मन जाए, क्योंकि मन वास्तव में लेकर के जाता है आत्मा को, लेकिन अगर बिल्कुल चेतन अवस्था में रहेंगे। अर्जुन का यही प्रश्न था भगवान से, तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मन को जाने दो जहां जाता है, लेकिन जहां जा रहा है वहां से उसको वापस लाओ। तो धीरे धीरे जब ये प्रैक्टिस वापस लाने की एकदम एकाग्र चित्त से बनेगी, तो फिर बहुत ज्यादा मन नहीं जाएगा। और जब बहुत ज्यादा मन नहीं जाएगा तो उस दो घंटे में अच्छे रिजल्ट आएंगे, और उसके बाद जहां समय मिलेगा मन करेगा भगवान का नाम लेने का। तो इस तरह से वो धीरे धीरे जो बीच में गैप्स हैं वो गैप भी फिल होने लगेंगे। उस सुबह लिया, फिर जहां दोपहर में थोड़ा टाइम मिला, फिर माला हाथ में ले लिया, दो चार माला फिर जप कर लिया, फिर शाम को जहां समय मिला भगवान के नाम के साथ जुड़ने का प्रयत्न करेगा। या ये सोचेगा नहीं आज कहां प्रोग्राम है, आज कहां जाना, आज वशिष्ठ प्रभु के यहां अच्छे से जाना चाहिए, प्रसादम भी है बाद में, तो वो सब चीजों में मन जाएगा जीव का। तो धीरे धीरे जो आज दो घंटा है वो चार घंटा छह घंटा, वो स्थिति इसी जीवन में आएगी। इस जीवन के परे का प्लान बिल्कुल नहीं बनाना है। प्रयत्न करके भगवान ने फॉर्मूला दिया हुआ है, उस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा उसकी हमको चिंता नहीं है। भगवान ने फॉर्मूला पूरा दिया है, मन बाहर जाए मन को खींच करके उसको सुनो, अभ्यास करो अभ्यास करो। भगवान कहते हैं कि अतः ऊर्ध्वम न संशया, पक्की बात है कि मन अपने आप जाएगा, सकेगा, प्रयास करने से होगा। और किसी का कोई प्रश्न है? चौगुना कैसे हो गया? अगर रिलेटिवली देखेंगे तो चार गुना हो गया। दो आदमी एक काम को एक दिन में करते हैं, एक आदमी उसी काम को या एक आदमी उस काम को चौथाई भाग में करता है, तो चार गुना हो गया कि नहीं उसकी एफिशिएंसी? ये दो हैं। अभी आप सुन रहे हैं मेरी बात, तो कितने कान यूज कर रहे हैं? दो कान यूज कर रहे हैं। देख रहे हैं तो कितनी आंखें यूज कर रहे हैं? काम कितना हो रहा है? एक। ये जीवा है एक, काम कितने करती है? दो। तो एक आदमी अगर दो काम करे और दो आदमी एक काम करे, तो इस आदमी की एफिशिएंसी कितने है उन बाकी आदमी के कंपैरिजन में? चार गुना हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। माता जी का अभी भी डाउट है, प्रभु जी आपको समझाना पड़ेगा, प्रभु जी एक्सप्लेन करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता रूप की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, शिला प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद, हरे कृष्णा। भक्तिन अनुष्का है, वो दो तीन मिनट के लिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, हम सब लोगों की प्रसन्नता के लिए कुछ यहाँ पर नृत्य हम सबके सामने करना चाहते हैं। तो एक बार आप हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके उसका स्वागत करें, उसका उत्साह बढ़ाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे। हेलो,
हाँ करा दो।